समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। हाय सायरा।
हेलो चारू, नमस्कार आदाब एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स।
सायरा, दुनिया के बाजार में आगे बढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? कुछ नया, कुछ बड़े मौके और ढेर सारी ऊर्जा। और इसीलिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर की संस्कृति, प्रतिभा और संभावनाओं को नई उड़ान देने के लिए भारत मंडपम में पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव आयोजित किया है। और 3 दिन के महोत्सव का आज दूसरा दिन है, तो जल्दी जाइए, हो सकता है वहाँ आपको कोई पुरानी धरोहर मिल जाए या कोई खजाना।
यस एब्सोल्युटली, और जो नहीं जा सकते, प्रॉब्ली इफ यू हैव सम अदर एंगेजमेंट्स, देन स्टे ट्यून्ड टू आवर शो, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वुड गिव यू एन इनसाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बट इन आवर कॉरेस्पोंडेंट सेक्शन। उसके पहले लेट्स स्टार्ट द शो विद द हेडलाइंस।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ओडिशा में 3 नए रेलवे लाइन सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीअफर्म्स गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इंप्रूव कनेक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री।
सीरिया में सुरक्षा बलों ने दारा शहर पर नियंत्रण खोया, विद्रोही देश के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स के करीब पहुंचे। भारत ने अपने नागरिकों को सीरिया छोड़ने की सलाह दी।
एंड इन जूनियर वुमेन्स हॉकी एशिया कप किक्स ऑफ इन मस्कत ओमान। And now, Charu, we all know that it's time for our segment, Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national or global level. And we all know that today, our nation celebrates the Armed Forces Flag Day. Armed Forces Flag Day is observed every year on 7th of December to honor the courage, sacrifice, and service of the men and women in the country's armed forces. This day is dedicated to expressing gratitude to the armed forces personnel and raising awareness about the welfare of ex-servicemen and their families. The observance of Armed Forces Flag Day highlights India's commitment to supporting those who protect the nation, both on the front line and also while off duty.
Sarah, wo jo hota hai na ki dil se aap kisi ko salute karte ho, hamare army wale itna kuch karte hain ki har insaan ka dil कहीं झुक ही जाता है। अब देखिए, आम लोगों से धन एकत्र करने और देश के सम्मान की रक्षा के लिए सीमाओं पर बहादुरी से लड़ने वाले शहीदों और जवानों को सम्मानित करने के लिए 7 दिसंबर को पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस 7 दिसंबर 1949 से हर साल मनाया जाता है। और इस दिन भारत के आम लोग धन का योगदान करके सैन्य कर्मियों का आभार व्यक्त करते हैं, और ये धन की ये भेंट हमारे सैन्य कर्मियों के कल्याण कार्यों में लगाई जाती है। देखिए, करने को तो हम छोटा मोटा कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा सच है कि जब हम सोते हैं तो वो जागते हैं, और वो हर दम उस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि अपनों पे कोई खतरा ना आए। देखिए, सशस्त्र सेना झंडा दिवस देश के नाम अपना जीवन करने वाले दिव्यांग पूर्व सैनिकों, युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों की विधवाओं, शहीदों के परिवारजनों की देखभाल करने के लिए मदद सुनिश्चित करता है, और उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सम्मान का प्रतीक है। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन लोग सैनिकों के कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए कई कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। झंडे, बिल्ले और स्टैम्प के माध्यम से धन एकत्रित किया जाता है, जो सशस्त्र बलों और उनके परिवारों की मदद के लिए उपयोग किया जाता है।
That's true, Charu. And in fact, आपने कहा हम लोग सुकून की नींद सो पाते हैं क्योंकि कहीं सरहद पे हमारे जवान, हमारे सैनिक जो है वो जाग रहे हैं। And yes, not just in times of war, every day is a challenge probably in the life of a soldier. And there are in fact, if you know, Charu, हम लोग जो है पूरे देश में रेडियो के जरिए हैं, सुने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आर्म्ड फोर्सेज वाले हम लोग को सुनते हैं। बिकॉज देर आर, यू नो, आई मेट अ कर्नल एंड ही सेड दैट समटाइम्स वी are posted in such unfavorable conditions where there is no television, no other radio but except Akashvani.
और ये आकाशवाणी पहुंचता है तो उनके दिल को बहुत अच्छा लगता है.
Yes.
उस वक्त देखिए कि एक खुशी होती है कि हम जो बोल रहे हैं वहां तक पहुंच रहा है और उनको सैल्यूट करने का जो एक सारे देशवासियों का दिल होता है उस आवाज को वो सुन पाते हैं.
यस एब्सोल्युटली. तो सिर्फ आप तसव्वुर कर सकते हैं, यू कैन जस्ट प्रॉब्ली इमेजिन राइट नाउ दैट इफ देयर इज अ सोल्जर हु इज पोस्टेड एट यू नो एट वेरी 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 यू कैन से इनक्लिमेंट वेदर कंडीशंस वेयर देयर इज वेरी यू नो बहुत ज्यादा मुश्किल हालात हैं, लेकिन अगर उन तक हम लोग की आवाज पहुंच रही है सो वी नीड टू कन्वे, वी हैव टू कन्वे एंड वी शुड कन्वे आवर ग्रैटिट्यूड on behalf of all the entrants on Armed Forces Flag Day. Yes, this day serves as a reminder of the bravery and dedication of India's defense forces, which include not just the Indian Army, but also the Navy and Indian Air Force. All these three forces work relentlessly to safeguard the country from external threats and maintain peace and stability. This day symbolizes a collective commitment by the citizens of India to show appreciation, gratitude and support for those who serve in the armed forces.
और इस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस के प्रतीक के रूप में जो भी चीजें वितरित करके या लोग इन प्रतीकों को खरीद कर एक जो अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, प्यार व्यक्त करते हैं, देखिए उनकी मदद के लिए सब किया जाता है और धन जुटाते ही ये प्रतीक सैनिकों के साहस और बलिदान का प्रतीक माना भी जाता है. देखिए इस दिन का जो आयोजन है वो सशस्त्र बलों की सेवा समर्पण को सम्मानित करने के लिए किया जाता है और उनके साहस बलिदान और उनके परिवारों के लिए की गई सहायता को लेकर जागरूकता फैलाने का कार्य करता है.
Yes, and if you look at the tradition that started, you know, of observing this day, it dates back to the year 1949 when the government of India established the Armed Forces Flag Day Fund. The day was chosen in honor of the efforts to honor ex-servicemen and ensure that they receive financial aid and support for their families. On this day, the Indian government encourages people from all walks of life to contribute in some way or the other, whether by buying a small flag or donating money to provide for the welfare of the armed forces. The flag represents the unity, integrity, and unwavering spirit of the armed forces. Its red, blue, and white colors symbolize the valor and commitment of the armed forces to defend the country's sovereignty.
और अब समय हो गया है अपने संवाददाताओं के माध्यम से देश के अलग अलग भागों में होने वाली गतिविधियों से अवगत कराने का. तो सायरा सबसे पहले कहाँ लेके चल रही हैं आप?
वेल लेट्स स्टार्ट विद, आपने खुद ही बताया था कि हम लोग जो है अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं. तो यस, सेलिब्रेटिंग द वाइब्रेंट टेपेस्ट्री एंड डाइवर्स कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अष्टलक्ष्मी महोत्सव इज बीइंग हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली. The three-day fest is the first of its kind, with over 250 artisans displaying their unique handicrafts, handlooms and agri-horti products, including 34 GI-tagged items. And our correspondent reports that the event will also host a fashion show, a design conclave, buyer-seller meet, which will offer a platform for meaningful collaborations and long-term economic impact.
The Ashtalakshmi Mahotsav is named after the eight avatars of Goddess Lakshmi, symbolizing prosperity, wealth, knowledge, dharma, agriculture and other features. The event features pavilions dedicated to Northeast India's celebrated Muga and Eri silk, live demonstration of artisanal craft and a special focus on the region's geographical indication products. Another mega attraction has been the Rural Heart Bazaar, showcasing produce and art from 320 farmers and artisans of the region. Addressing a technical session today, Development of Northeastern Region Minister Jyotiraditya Sindhya said that center is assisting each northeastern state to hone the specialties and it present it to the world. Talking exclusively to Akashvani News, Chief Minister of Meghalaya Konard Sangma said that Ashtalakshmi Mahotsav will play a key facilitator in bringing all stakeholders together.
It is very important that the northeast states come together and work as a team. And it's very, very crucial for donor ministry to play that facilitation role of bringing us together, directing us, and making sure that we work together as a team, creating the policy, creating the environment. I think programs like these enable that environment. Programs like these enable to bring not just the governments, but the different stakeholders together. So therefore, it's a great initiative, a great start, and we really look forward to it happening every year so that can get better and better in the day.
Naman Baisla, a visitor at the festival, said Northeast India has always captured his imagination. The Ashtalakshmi Mahotsav is not just an outlook into the cultural beauty of the region, but also to explore economic opportunities. With Adarsh, Saklen Akhtar for Parikrama.
So Charu, it's a weekend also, so I'm sure that after listening to our very, very visual report of our correspondent, I'm sure that many people who are probably thinking ki kya kiya jaye weekend pe, now they would be inspired and enthused to go to the Ashtalakshmi Mahotsav in Bharat Mandapam. And is silsile ko parikrama ke aage badhate hain. Now we head towards Bihar. Well, we all know that Charu, Bihar aur khas taur se Assam ke regions mein every year when monsoons come to floods aate hain. And hum log shayad tasavvur bhi nahi kar sakte that you know how much people are affected by it aur unko phir se scratch se apni zindagi हर साल शुरू करना पड़ती है
और वो ये सब कर पाते हैं और देखिए कोशिशें उनकी बहुत अच्छे से होती हैं.
That's true. And yes, of course, floods leave an everlasting effect on the people where they come. And इन सारी उनकी कोशिशों को, human spirit को, उनकी पीड़ा को जो है कैद किया है किसी ने अपने कैमरे में. And there's a photo exhibition that is titled Portraits of Persistence and Enduring Communities of North Bihar. And this exhibition is by Eklavya Prasad. It actually captures all the moments of the flood-affected people. So let's hear more from Sumit.
The exhibition is being held at the India International Centre Annex in New Delhi from 11 a.m. to 7 p.m. and will continue till the 12th of this month. It captures the untold resilience of North Bihar's communities as they confront the cyclical devastations of annual flooding. The photograph documents the immediate impacts on daily life as homes, farmlands and infrastructure yield to the force of water. It also reflects the long-lasting impacts of these floods seen in the transformations of rural society and generational imprints on people's lives. Each of the photographs reveals their remarkable strength, resourcefulness, and determination as they prepare for, recover from, and endure the impacts of these natural forces. Talking to Akashvani, Eklavya Prasad said that this exhibition is about telling people that floods are not just for 3 months, as their effects continue throughout the year.
This is part of a visual katha series, which is titled Portraits of Persistence, Enduring Communities of North Bihar. And this exhibition actually captures one particular disaster, which at one point of time was not a disaster. It was a boon for people staying in the floodplains. And this exhibition has captured not only the inundation bit of the flooding, but has gone into the details of the different facets this particular disaster has. And the intent to bring in this whole perspective of flooding is to tell people here in Delhi and elsewhere, floods are just not for 3 months. It is something which continues throughout the year.
Talking to Akashvani, a visitor said that this exhibition has opened their eyes about the long-lasting effects of flood and the fighting spirit of the people to cope with it.
My name is Muskan Bhatia. I got to know about this exhibition through work professional, and this really opened my eyes about the plight of the people in Bihar, specifically North Bihar, that what they go through is not just during the flood. It's during, before and after the flood. And Mr. Photographer, Mr. Eklavya Prasad, has really captured it in a very narrative, you know, storytelling fashion, where he has captured exactly the different types of floods. He has introduced that to me. And then he has also talked about how people are coping with it.
The exhibition celebrates the resilience and indomitable spirit of North Bihar's rural communities, which persistently face and adapt to the relentless cycle of flooding. Sumit Saha for Parikrama.
मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पंचमढ़ी अब महिलाओं की अदम्य शक्ति और नेतृत्व का नया प्रतीक बन गया है. पंचमढ़ी में पर्यटन निगम का होटल एमपीटी अमलतास प्रदेश का पहला होटल बन गया है, जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाएं ही करेंगी. सारा देखो, इसमें प्रबंधक से लेकर शेफ और सुरक्षा गार्ड तक सभी भूमिकाएं महिलाओं के हाथ में हैं. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इसका उद्घाटन किया. राज्य के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न केवल होटल अमलतास बल्कि अन्य परियोजनाओं में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 50 पर्यटन स्थलों पर 40,000 महिलाओं को आत्मरक्षा और 10,000 को पर्यटन हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जा रही है।
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए होटल अमलतास का पूरा संचालन महिला कर्मचारियों द्वारा किए जाने की योजना बनाई है। इसके लिए 23 स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित कर नियुक्त किया गया है। अब ये महिला कर्मचारी होटल अमलतास का संचालन करेंगी।
And now we head towards Ahmedabad. Well, as the nation gears up for the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, a wave of excitement is sweeping through college campuses and institutions. One of the key activities in this series is the Viksit Bharat Quiz, which has been extended until the 10th of this month. In Gujarat alone, over 45,000 youngsters have participated in the quiz so far. So, jante hain kuch aur details?
To achieve the dream of Viksit Bharat by 2047, the contribution of India's youth is essential. Known for its demographic dividend, India is making stride in every sector, with its youth leading the charge. Speaking with Akashwani, Kamal Kumar Kar, the Regional Director of National Service Scheme, highlighted how this event will provide an opportunity for the young people to contribute to the vision of developed India.
Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2025 mein mool hetu hai ki jo yuva hain Bharat ke, unki मन में विकसित भारत 2047 के लिए क्या है, कैसे देखना चाहते हैं भारत को, इसके बारे में अपना जानकारी रखेंगे, अपने राय रखेंगे और उनमें से पूरे भारत में से अलग अलग पर्याय में बच्चे सिलेक्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन में दिल्ली में भारत मंडपम में 11 और 12 जनवरी दो दिन कार्यक्रम होगा जो कि भव्य कार्यक्रम होगा, उसमें ये बच्चे शामिल होंगे और वहां पर विकसित भारत विरासत भारत की विरासत के बारे में बात होगी। भारत 2047 तक स्टार्टअप की हब होना चाहिए, स्टार्टअप कैपिटल हो सकती है, हमारा एनर्जी रिलायबल हम हो जाएंगे, हमारे महिला सशक्तिकरण, तो अलग अलग विषय के ऊपर अपना मत वहां पर रखेंगे। तो इसको शुरू करने के लिए जो पहला पायदान है, पहला सीढ़ी है विकसित भारत क्विज। तो ये जो क्विज है हमारा मंत्रालय की माई भारत पोर्टल है, URL है www.my.gov.in। इसको 10 तारीख तक इसको बढ़ाया गया है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है हमारे युवाओं के लिए।
दिस इवेंट विल नॉट ओनली इंस्पायर द यूथ टू थिंक बिगर फॉर द नेशन बट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू चैनल देयर इनोवेटिव आइडियाज इनटू एक्शन फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। फॉर परिक्रमा दिस इज अपर्णा खुंड, आकाशवाणी न्यूज अहमदाबाद।
देखिए, किसामा के नागा हेरिटेज गांव में 25वें हॉर्नबिल समारोह को काफी संख्या में लोग देखने आ रहे हैं आजकल, और देश के तीन मशहूर बैंड परिक्रमा, इंस बैंड और गिरीश ने शानदार प्रदर्शन किया और 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने इस प्रदर्शन को देखा। हॉर्नबिल समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सायरा, बहुत ज्यादा अच्छा वो चल रहा है, हो सके तो आप भी जाओ।
यस एब्सोल्युटली, एंड वेल फिजिकली ना जा पाए तो दिल तो बिल्कुल कर रहा है कि उड़ के पहुंच जाए हॉर्नबिल फेस्टिवल में। एंड यस, इनफैक्ट पहले बहुत सिर्फ 3 दिन के लिए होता था एंड नाउ बिकॉज ऑफ द यू नो सच ह्यूज टर्न आउट दैट पीपल थ्रॉन्ग दिस फेस्टिवल, दैट्स व्हाई इट वाज एक्सटेंडेड फॉर 10 डेज। एंड एज यू हैड मेंशन चारू दैट टिल यस्टरडे 1,00,000 विजिटर्स हैव ऑलरेडी यू नो विजिटेड द हॉर्नबिल फेस्टिवल। सो let's hear more details.
The vibrant crowd gathered at the festival's main venue witnessed an unforgettable evening of music, energy and celebration, showcasing the diversity of India's rock scene. The entire evening was a testament to the growing rock music scene in India, with each band bringing their unique style and sound to the iconic Hornbill Festival. Crowd, a mix of local tourists and rock enthusiasts, revelled in the high energy performances, making it clear that live music at the festival is becoming a major draw for fans from around the world. Adding to the excitement, Nagaland's very own Fifth Note, the winner of the Ticket to Hornbill 2024 contest, opened the show with their electrifying performances. Interesting events are lined up for the day, which include a cultural show by the Northeast Zone Cultural Center, state-level log-cutting competition, blowing of horns and yelling competition, and the Hornbill Carnival Parade, among others. With so many engaging events, the day promises full of excitement and community spirits. Asonyo, Akashwani News, Kohima.
हाय सिद्धार्थ।
हेलो चारू।
स्टूडियो में आ गए हो सिद्धार्थ, तो जो आज आपको कुछ मैच का बताना है तो बस बता दीजिए, जरा बताइए खेल की दुनिया में क्या हलचल है।
जी हाँ चारू, अगर खेल खबरों में नजर डालें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे दिन का खेल जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 105 रन बना लिए हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 337 रन बनाकर 157 रन की बढ़त बनाई थी। वहीं भारत की टीम पहली पारी में मात्र 180 रन पर सिमट गई थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। उधर सिंगापुर की अगर बात करें तो वहां पे विश्व शतरंज चैंपियनशिप चल रही है, जहां ग्रैंड मास्टर डी गुकेश और विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन के बीच 10वीं बाजी खेली जा रही है। दोनों खिलाड़ी 4.5-4.5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। प्रतियोगिता में लिरेन ने पहली बाजी जीती थी, जबकि गुकेश तीसरी बाजी में विजयी रहे थे। बाकी सभी बाजियां ड्रॉ रही हैं। ऐसे में आज की बाजी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल दोनों खिलाड़ियों के बीच मुकाबला जारी है। लगातार 6 ड्रॉ के बाद दोनों खिलाड़ियों की नजर जीत के साथ बढ़त बनाने पर लगी है। 14 बाजी के मुकाबले में 7.5 अंक बनाने वाला खिलाड़ी नया विश्व चैंपियन बनेगा। उधर हॉकी की बात करें तो जूनियर महिला एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट आज से ओमान की राजधानी मस्कट में शुरू हो रहा है। भारतीय टीम अपना अभियान कल ज्योति सिंह की कप्तानी में बांग्लादेश के साथ मैच से शुरू करेगी। मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। तो बाकी की खबरों के लिए चलते हैं सायरा और चारू के पास।
थैंक यू सिद्धार्थ, एंड वेल वेरी वेरी वेल रिसर्च्ड स्पोर्ट्स अपडेट, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आजादी का सफर।
17 इयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट, इंक्लूडिंग 5 इयर्स ऑफ टॉर्चरस इंप्रिजनमेंट एट कालापानी एंड 2 डेयरिंग जेल ब्रेक्स आर जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ द हार्डशिप्स इन द लाइफ ऑफ द ब्रेव फ्रीडम फाइटर योगेंद्र शुक्ला। Born in Vaishali, Bihar, Yogendra was inspired by the sacrifice of young Khudiram Bose. He started revolutionary activities in Uttar Pradesh and Punjab.
For many years, Yogendra Shukla was the senior associate, mentor and trainer of Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt in Hindustan Socialist Republican Association. Pained and grieved by the hanging of Bhagat Singh, Yogendra Shukla decided to build the organization back in Bihar.
In 1932, he was caught by a British spy and sent to cellular jail in Andaman Nicobar. Along with fellow prisoners in groups, he was chained like bullocks, blindfolded and dragged to the oil mills. Flogging was normal practice inside the jail. Yogendra Shukla went on hunger strike inside the jail against the inhuman treatment given by the British. After 5 years at Kalapani, Yogendra Shukla was transferred to Hazaribagh Central Jail. He was released in March 1938.
Yogendra Shukla joined the Indian National Congress after his release, but soon became a member of the Congress Socialist Party at the instance of Jayaprakash Narayan. He was again arrested in 1940 after he became a member of the Central Committee of the All India Kisan Sabha. In 1942, the call of the Quit India movement stirred him from inside. In a daring move, he, along with Jayaprakash Narayan and other associates, climbed up the wall of the jail at midnight and escaped from captivity.
As Jayaprakash Narayan was ill, Yogendra Shukla lifted him on his shoulder and walked through a distance of about 124 kilometers to Gaya. Yogendra Shukla led the Quit India movement in Muzaffarpur. Some of his close associates were then imprisoned in Muzaffarpur jail. Here also, he led them to escape the jail. The British had announced a big sum of reward for the arrest of Yogendra Shukla. He was tricked and arrested and was sent to Buxar jail.
In 1946, the local government pressurized the British to set him free. Post-independence, Yogendra Shukla was nominated to the Bihar Legislative Council in 1958. He remained active and vocal for the cause of the poor till his death in 1960. Remembering his perseverance and love for the nation is perhaps the only tribute to the great son of soil.
Today we also remember Bagha Jatin on his birth anniversary. Jatindranath was born in Nadia district of undivided Bengal. He was called Bagha because once to save villagers, Jatin fought with a Royal Bengal tiger and kill the tiger with a dagger.
It was Sri Aurobindo who instructed Jatin to create a secret society. That secret society was known as Yugantar, and Jatin became its commander-in-chief. Jatin inspired many young minds. He said, Amra Morbo Jogo Jagbe, meaning we shall die to awaken the nation.
In the year 1914, when the First World War broke out, Jatin sought foreign help. His group was going to receive the consignment of arms near Baleshwar, but the information of this consignment was leaked by an Irish agent and the British attacked his group. Jatin and his group members fought hard, but Jatin was seriously wounded in the battle and he succumbed to injuries the next day in Baleshwar City Hospital.
Tribute to the brave warrior. That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
And now it's time for our last segment in which we remember some of the personalities who either had the death, birth, anniversaries or birthdays today.
Bilkul. आज ही के दिन 1928 को अमेरिकी भाषाविद नोम चॉम्स्की का जन्म हुआ और सीखने की पद्धति को चुनौती देते हुए जोर दिया कि बच्चे के दिमाग में काफी ज्ञान और व्यवहार पहले ही मौजूद होता है. इन्होंने आधुनिक भाषा विज्ञान के संस्थापक चॉम्स्की जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्होंने पुरस्कार लिए और देखिए जिनमें क्योटो पुरस्कार, बेन फ्रैंकलिन मेडल और फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड शामिल है. लैंग्वेज एंड माइंड जैसी उनकी हर किताब ने क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान दिया. उन्होंने चॉम्स्की पदानुक्रम और जेनरेटिव व्याकरण के सिद्धांत को पेश किया, पर जिस अवधारणा को पेश करके उन्होंने भाषा विज्ञान में क्रांति ला दी वो था मन मस्तिष्क के मूल स्वरूप में बसा एक ऐसा सार्वभौमिक व्याकरण जो सभी मानव भाषाओं का आधार है.
Today we are also remembering Subrata Mitra on his death anniversary and a cinematographer par excellence. We all know that he was acclaimed for his work in the Apu trilogy and in fact Satyajit Ray preferred him over Kottak, who was probably the best cinematographer of his time. And Mitra made his first technical innovation while shooting Aparajito. The fear of monsoon rain, Charu, had forced the art director to abandon the original plan, jo ki tha ki jo aangan hai wo khule mein dikhayenge, ek Banarasi ghar ka. But then the set was built inside a studio in Calcutta. And Mitra recalls arguing in vain with both Chandragupta and Ray about the impossibilities of simulating shadowless diffused skylight. But this led him to innovate what became subsequently his most important tool, which was bounce lighting. Mitra placed a framed painter, white cloth over the set, resembling a patch of sky, and arranged studio lights below to bounce off the fake sky. So, we look at the screen, we just enjoy it. But what all goes behind the scenes to maybe create that visual, I think hats off to great cinematographers like Subrata Mitra.
Bilkul. अब हम बात करते हैं आज ही के दिन 2011 को अभिनेता और निर्देशक हैरी मॉर्गन का निधन हुआ था. हैरी मॉर्गन ने हास्य धारावाहिक मैच में सख्त लेकिन निष्पक्ष कर्नल शर्मन टी पॉटर की भूमिका निभाते हुए एमी पुरस्कार जीता. वो 6 दशकों तक फिल्मों और टेलीविजन में सहायक अभिनेता रहे. 40 के दशक से उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया और वो द ऑक्सबो इंसिडेंट में कथित पशु तस्करों की हत्या के गवाह के रूप में बहुत प्रभावी थे. जहां फिल्म द बिग क्लॉक में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई, वहीं फिल्म हाई नून में डाकू से डरने वाले व्यवसायी के रूप में भी वो यादगार रहे.
We are also remembering Kumar Sahni on his birth anniversary. We all know that he is best known for Paddle Cinema and especially film Maya Darpan. So, jaldi se Maya Darpan ka ye gana sun lete hain, Aajar in India.
तो वक्त खत्म हो रहा है भाई, आज की परिक्रमा बस यहीं तक। तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरी सहयोगी सायरा को।
नमस्कार, नमस्कार।